हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 471 5 बजे सुबह का वक्त था। आदित्य का पुश्तैनी बंगला। एक कमरे में आदित्य और सुनैना एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी आदित्य ने आंखें बंद किए हुए नींद में बड़बड़ाना शुरू किया।
नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जानता तुम्हें, जो यहाँ से मुझे तुमसे बात नहीं करनी, नहीं।
ये सब कुछ बोलते हुए वो अपना सर इधर से उधर हिला रहा था और अपनी धीमी आवाज़ में नींद में ही ये सब कुछ बुदबुदाए जा रहा था। ये सुनकर सुनैना की आंखें एकदम से खुल गईं। पहले उसे लगा कि आदित्य उसे जगाने के लिए कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर उसने बगल में देखा तो आदित्य सो रहा था, पर वो पूरी तरह से सोया हुआ भी नहीं लग रहा था। वो नींद में बड़बड़ाते हुए इधर से उधर हिल रहा था, इस तरह से जैसे कि वो बहुत बेचैन हो या शायद कोई बुरा सपना देख रहा हो। सुनैना तुरंत ही बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने आदित्य की तरफ अपना चेहरा किया और उसके गाल पर हल्के से थपथपाते हुए बोली, आदि आदि, आंखें खोलो अपनी, क्या हो रहा है तुम्हें आदि, वेक अप। आदित्य अभी भी नींद में बड़बड़ा रहा था।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नो।
उसके पूरे माथे पर पसीना था और उसकी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे कांप रही हो। उसका कंधा पकड़कर सुनैना ने उसे नींद से जगाने और उठाने की पूरी कोशिश की। तभी तेज आवाज में नो चिल्लाते हुए आदित्य अपनी जगह से एकदम उठकर बैठ गया। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। उसके माथे पर पसीना था और उसकी दिल की धड़कन भी एकदम बढ़ी हुई थी। उसके साथ ही बैठी हुई सुनैना भी कहीं ना कहीं उसका ये डर महसूस कर पा रही थी। आदित्य को ऐसे घबराया हुआ देखकर उसने तुरंत ही आदित्य के गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बहुत ही आराम से उससे पूछते हुए बोली, क्या हुआ आदि, ठीक तो हो ना तुम? इस तरह से नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या हुआ, कोई बुरा सपना था क्या? इस तरह एकदम से नींद से जागने के बाद आदित्य को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो नींद में है और उसे सपने में ही है। लेकिन जैसे ही सुनैना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसे बहुत राहत महसूस हुई। सुनैना ने उसके गाल पर छुआ और जैसे ही उसने सुनैना को देखा, वो एकदम से आगे जाकर सुनैना को कसकर पकड़ते हुए उसके गले लग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जो कि उसके गले लगे हुए सुनैना को भी सुनाई दे रही थीं। सुनैना ने हल्के हल्के उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया और बहुत ही आराम से बोली, आदि कुछ भी नहीं हुआ, देखो हम यहाँ पर हैं अपने घर में, तुम भी ठीक हो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज रिलैक्स। सुनैना आदित्य को समझाने और उसे कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही थी, साथ ही उसे क्या हुआ है ये समझने की भी कोशिश कर रही थी। कुछ 5-10 मिनट तक आदित्य इस तरह से उसके गले लगाकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद आदित्य ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, लेकिन फिर 10 मिनट बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वो सुनैना से थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन अभी भी उसने सुनैना का हाथ कसकर अपने हाथों में ही पकड़ रखा था। सुनैना ने भी उसके हाथ से अपना हाथ वापस नहीं लिया और इस तरह उसके सामने चुपचाप बैठी रही। वो आदित्य के खुद से बोलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बार बार पूछने पर शायद उसकी हालत और भी खराब हो सकती है, इसलिए सुनैना उसे अपना समय लेने दे रही थी। सुनैना की आंखों में देखते हुए आदित्य ने बोलना शुरू किया, सुनो तुम मुझे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाओगी, है ना? चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, या फिर कभी। उसकी आंखों में घबराहट, टेंशन, परेशानी सब कुछ एक साथ ही नजर आ रहा था। सुनैना भी वो सब कुछ महसूस कर पा रही थी, इसलिए आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसने आदित्य के मुंह पर उंगली रखी और बोली, कुछ मत बोलो आगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और जिससे अपनी जान से जुदा हो सकता है क्या? आदित्य तुम मेरी जान बन गए हो, तुम्हें छोड़कर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरी जिस्म से मेरी जान ही निकल जाए। सुनैना ने बहुत ही गहराई से आदित्य की आंखों में देखते हुए बोला और उसकी बातों में आदित्य को एक अलग ही सच्चाई नजर आ रही थी, जिसे सुनकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई और उसे अच्छा लगा। अपनी जान की जान निकलने दूंगा क्या मैं कभी मेरे रहते? इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपने करीब करते हुए उसे किस करने लगा। सुनैना भी उसकी सिचुएशन को समझते हुए इसमें उसका साथ देने लगी, खासकर उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि सोने से पहले भी उनके बीच ऐसी बातें हुई थीं जिसके बाद से वो बहुत स्ट्रेस हो गया था। उसके बाद से इस तरह से उसका नींद में बड़बड़ाना और ये बुरे सपने। सुनैना को जहाँ तक याद है शादी के बाद से शायद ऐसा पहली बार ही हुआ था। फिर उसे किस करते हुए सुनैना ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए फिर वो उसके एकदम करीब होकर लेट गई। आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर सुनैना की तरफ देखा और फिर उसे खींचकर अपने और नज़दीक कर लिया, इस तरह से जैसे वो पूरी तरह से उसे अपनी आंखों में भर लेना चाहता हो और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। आदित्य की बाहों में उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखकर सुनैना ने बहुत ही तसल्ली से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ऊपर छत की तरफ देखते हुए आदित्य की आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूजन नजर आ रहे थे। इसके अलावा एक अनजाना डर भी उसके चेहरे पर दिख रहा था, जिससे लड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। अभी 5 ही बजे थे, इसलिए वो दोनों ही दोबारा से लेट गए, लेकिन नींद उन दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी। पर फर्क इतना था कि सुनैना आंखें बंद करके सच में डूबी हुई थी, लेकिन आदित्य जागृत आंखों से अपने आसपास सब कुछ सोच रहा था। जनगामा, सुबह लगभग 10 बजे, अक्षत का बंगला। विवान सुबह के 4 बजे ही अपनी शिफ्ट खत्म करके आया था और इस वक्त अपने रूम में एकदम गहरी नींद में सो रहा था। उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। अक्षत और नैना ने भी उसे नहीं जगाया। इसके अलावा नैना का आज एक स्क्रीन टेस्ट था। नैना को एक सेकेंड फिल्म का ऑफर भी आया था, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़कर उसने फाइनल कर लिया था, लेकिन उसे मूवी में हीरोइन के लिए साइन करने से पहले उसका एक स्क्रीन टेस्ट होना था और इसके लिए ही आज उसे दोपहर में बुलाया गया था। अभी उसके निकलने में टाइम था, क्योंकि उसे दोपहर के 2 बजे तक स्टूडियो पहुंचना था। अब तक वो इन सब चीजों में काफी एक्सपर्ट हो चुकी थी, इसलिए उसे नर्वसनेस नहीं होती। उसकी पहली फिल्म में उसकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई थी। इसके अलावा अक्षत भी उसे इन सब चीजों से रिलेटेड टिप्स देता रहता था। अभी वो दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अक्षत ने अपनी प्लेट में से उठाकर उसे कुछ खिलाया। नैना मना कर रही थी, लेकिन फिर उसकी खुशी के लिए आखिर उसने अपना मुंह खोल दिया और मुस्कुराते हुए अक्षत के हाथों से खाने लगी। तभी उन्हें दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट हुई। सुबह के इस वक्त दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए अक्षत, नैना या किसी भी मेड को जाकर दरवाजा नहीं खोलना पड़ा। वहां हॉल में पहले से ही काफी सारे मेड और सर्वेंट थे। दरवाजे पर कार आकर रुकी और उसमें से अक्षत के मम्मी पापा निकलकर सीधे घर के अंदर आए। फिर उन लोगों ने सर्वेंट से अक्षत के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बता दिया कि वो इस वक्त डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहा है। अक्षत के पापा एकदम सीरियस लग रहे थे, वहीं उसकी माँ ने बुरा सा मुंह बनाया हुआ था।
वो अपने अलग ही एटीट्यूड में लग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी उन्होंने एकदम हाई क्लास लेडी जैसा डिजाइनर प्रिंटेड ड्रेस पहना हुआ था। उनके हस्बैंड अक्षत के पापा मिस्टर कपूर ने 3-पीस डार्क ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और पॉकेट में हाथ डाले हुए वो तेज कदमों से चलते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ आए। नहीं अक्षत, अब और नहीं, मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया है सच में, आप खाइए। अक्षत का हाथ पकड़कर नैना अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे करते हुए बोली। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे बेटा, अपनी माँ को तो कभी ऐसे नहीं खिलाया, हमसे भी पूछ लो नाश्ते के लिए। अक्षत, उसके पापा ने एकदम सीरियस आवाज में उसका नाम लेकर पुकारा तो अक्षत तुरंत ही नैना का हाथ छोड़कर एकदम अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उन दोनों की आवाज सुनकर नैना भी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और उसने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों को सामने देखकर अक्षत को कुछ समझ नहीं आया और एकदम ही उसके मन में जो आया वो बोलने लगा, मॉम डैड, आप दोनों यहां ऐसे अचानक से, इन्फॉर्म भी नहीं किया। नैना भी उसके एकदम बगल में ही खड़ी थी। अक्षत को ये बोलते हुए सुनकर उसने हल्के से अक्षत को कोहनी मारी और अक्षत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो नैना ने घूर कर उसे चुप रहने का इशारा किया, जिसे समझकर फिर अक्षत ने आगे और कुछ नहीं बोला। अक्षत की माँ ने बहुत ही अजीब तरह से कहा, अच्छा तो क्या अपने बेटे के घर में अब हम आ भी नहीं सकते हैं? आने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तुम्हारी या फिर किसी और की भी? नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आइए ना नाश्ता करते हैं साथ में। अक्षत तुरंत ही अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए आगे आया, लेकिन उसके पापा ने तुरंत ही अपना हाथ दिखाते हुए अक्षत को वहाँ सामने उसकी जगह पर ही रोक दिया और बोले, नहीं, इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जो भी न्यूज़ तुम्हें और इस लड़की को लेकर आ रही है उसे बारे में, क्या तुमने इस बारे में कुछ भी सोचा है? तुम्हें पता है तुम्हारे करियर के लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? अक्षत के पापा ने ये बात एकदम ही सख्त आवाज में बोली, लेकिन उन्होंने सीधी तरह से नैना की तरफ ही इशारा करते हुए ये बात कही, जिसे कि समझते हुए नैना के चेहरे पर मायूसी एकदम साफ नजर आने लगी और उसका सिर नीचे झुक गया। वो उन लोगों के बीच कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि पहले ही अक्षत के पेरेंट्स उसे इतना पसंद नहीं करते, इसलिए बीच में कुछ भी बोलकर वो उनकी नज़रों में अपनी और खराब इमेज नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन अक्षत अपने सामने नैना की बुराई या उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता था, लेकिन वे दोनों उसके मम्मी पापा थे, इसलिए वो सीधी तरह से उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, मॉम डैड प्लीज़ आप लोग पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, चलिए हॉल में चलकर बैठते हैं, वहां पर बैठकर आराम से बात करेंगे। अक्षत की ये बात सुनकर उसकी माँ कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी अक्षत के पिता ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और अक्षत और नैना के साथ उसके मम्मी पापा भी वहां पर लिविंग एरिया में आ गए क्रमशः।